दीवा आर्यांश के साथ मूवी देखने के लिए आई हुई थी। वहां मॉल में सबसे सामने आर्यांश ने दीवा का हाथ पकड़ा तो दीवा ने उसे टोका। दीवा के रोकने पर आर्यांश ने किस करने की धमकी दी तो दीवा घबराकर उससे कुछ कदम दूर हो गई। आर्यांश ने आई विंक की और उससे दूर हो गया। दीवा ने राहत की सांस ली। वो धीमे कदमों से आर्यांश से कुछ कदम दूर चल रही थी। अचानक दीवा फिर लड़खड़ाकर गिरने वाली थी तो आर्यांश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। आर्यांश ने घूर कर देखा और कहा, बेवकूफ लड़की, देख कर चला करो, अभी गिर जाती तो। आर्यांश को कई बार हैरानी होती कि उस जैसी सीधी साधी बेवकूफ लड़की आखिर इतनी अच्छी डॉक्टर कैसे बन गई। दीवा ने सार्कास्टिकली मुस्कुराकर कहा, हाँ सही कहा, मुझे ठीक से दिखता नहीं है। आर्यांश ने बेपरवाही से सिर हिलाया और फिर वो दोनों थिएटर में आ गए। उन्होंने साथ में वो एक्शन मूवी एंजॉय की। बीच में कोई खतरनाक सीन आया तो दीवा ने घबराकर आर्यांश के बाजू को पकड़ लिया था। उसकी इस हरकत पर आर्यांश मुस्कुराकर रह गया। मूवी खत्म होते ही वो दोनों बाहर आए। दीवा ने आर्यांश से पूछा, कॉफी पीने चले? जैसा तुम कहो, आर्यांश ने जवाब दिया। वो ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। आर्यांश के हाँ कहते ही मॉल में दीवा उसके साथ स्टारबक्स में आ गई थी। वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। ये देखकर दीवा ने राहत की सांस ली। ये माहौल उसे अच्छा लग रहा था। मैं एक्सप्रेसो लेना चाहूँगी, तुम्हें क्या चाहिए? दीवा ने आर्यांश की तरफ देखकर पूछा। वही जो तुम ऑर्डर करो, आर्यांश ने जवाब दिया। वो अपने फ़ोन में लगा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी सीरियस थे, शायद वो किसी से बात करने में बिजी था। दीवा ने उन दोनों के लिए दो कप एक्सप्रेसो कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। वो जानती थी कि आर्यांश को एक्सप्रेसो पसंद है। काफ़ी बार उसने वो उसके सामने ही ऑर्डर की थी। कॉफ़ी आ रही थी, इतने में वे दोनों बैठे हुए थे। दीवा का मन किया कि वो झुककर आर्यांश के फ़ोन के अंदर देखे कि वो इतनी दिलचस्पी से किससे बात कर रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर उनके बीच ऐसा रिश्ता नहीं था कि वो उसे हक से कुछ पूछे। कॉफ़ी रेडी होते ही दीवा उठकर जाने को हुई तो आर्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हें चोट लगी है, खुद को इतना परेशान मत करो। क्या, सिर्फ एक छोटी सी चोट तो है? और हाथ पर लगी है, पैर पर नहीं, मैं उठकर जा सकती हूँ, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। आर्यांश ने उसे पीछे बैठने का इशारा किया। वे ऊपर के फ्लोर पर जा रहे थे जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी। कॉफ़ी लेने के बाद वे बैठ गए तो दीवा ने अचानक उससे पूछा, आर्यांश, तुम्हें एक्सप्रेसो कॉफ़ी पसंद है ना? हाँ, पसंद है। आर्यांश ने पहली बार किसी चीज़ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, वरना वो हर चीज़ को ठीक ठाक ही बताता था। लेकिन क्यों? मुझे तो अच्छी नहीं लगती, बहुत कड़वी होती है, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, क्योंकि इसका स्वाद पहली मोहब्बत जैसा है, कड़वा लेकिन सुकून देने वाला, आर्यांश ने खोए हुए स्वर में जवाब दिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, जिसे दीवा ने नोटिस कर लिया था। उसने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी दीवा का मुंह बना हुआ था। उसने मन ही मन कहा, ये क्या बकवास है, पहली मोहब्बत का स्वाद? ये क्या अभी भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड को याद करता है? आर्यांश को वो वक्त याद आ गया था जब वो स्कूल में था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्री होता तो सीधा वे दोनों कैफेटेरिया जाते और एक कप एक्सप्रेसो ऑर्डर करके काफ़ी देर तक दोनों बातें करते। आर्यांश अभी भी चैट करने में बिजी था, तभी दीवा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी अपनी पहली मोहब्बत को याद करते हो? दीवा काफ़ी डरते डरते सब कुछ पूछ रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं आर्यांश गुस्सा न हो जाए। उसकी उम्मीद के विपरीत आर्यांश आज उसकी हर बात का मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो आज भी याद आती है। दीवा के लिए ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। आर्यांश ने कभी खुलकर उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। दीवा को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। दीवा ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर ब्रेकअप क्यों किया? अगर ब्रेकअप नहीं करता तो तुमसे कैसे मिलता? आर्यांश ने काफ़ी लाइटली जवाब दिया। दीवा का मूड भी लाइट हो गया था। दीवा ने भी काफ़ी हल्के तरीके से आगे कहा, अरे मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें अभी भी उससे प्यार है तो जाओ, जाकर उसे हासिल कर लो। मेरे बारे में इतना सोच रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आर्यांश ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अरे नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी खुशी के बारे में सोचो, दीवा ने जल्दी से सफाई दी और इधर उधर देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों के भाव आर्यांश पढ़ ले। अगर आर्यांश का बिहेवियर दीवा के साथ इतना ही स्वीट रहा होता तो अब तक वो अपने प्यार को खुलेआम एक्सेप्ट भी कर चुकी होती। वो तो बस अपने फीलिंग्स को दबाए हुए थी। आर्यांश ने अचानक उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम पागल हो, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है। आर्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में प्यार देखकर दीवा का दिल बेकाबू होने लगा था, जबकि आर्यांश पहले ही उसकी फीलिंग्स को समझ गया था। वो चाहता था कि दीवा आगे आकर अपनी फीलिंग्स का इजहार खुद से करे। दीवा कुछ कहने से पहले आर्यांश का मोबाइल बज उठा। उसने जल्दी से उसे उठाया और दीवा से कहा, मुझे जाना होगा, तुम ऐसा करना कि घर चले जाना और मॉल में ज्यादा मत घूमना, ठीक है? दीवा ने मायूसी से कहा। वो आर्यांश को रोकना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशंस देखकर उसने खुद को रोक लिया। दीवा उसे जाते हुए देख रही थी जब तक वो भीड़ में ओझल नहीं हो गया। उसे अच्छा लग रहा था कि आर्यांश ने उसके लिए टाइम निकाला और मूवी दिखाने के लिए लेकर आया, लेकिन हमेशा की तरह वो उसे अकेले छोड़कर चला गया था। दीवा खुद को लाख समझाने की कोशिश कर ले कि आर्यांश और उसका रिश्ता बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता था। हर रात सोने के बाद सुबह आर्यांश उसे अकेले छोड़कर चला जाता तो दीवा के दिल में उतना ही दर्द होता जितना अब उसे महसूस हो रहा था। आर्यांश की हरकत ने दीवा के दिल में रक्षित की याद ताज़ा कर दी थी। जब वे दोनों डेट कर रहे थे तब रक्षित उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था, उसके जाने के बाद ही खुद जाता था। अचानक दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो मन ही मन बोली, आर्यांश जैसे इंसान के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल है। उसने हमेशा मुझे यही एहसास दिलाया है कि वो हर तरीके से परफेक्ट है और मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। हमारे बीच का प्यार? दीवा रुक गई। उसने आगे कहा, नहीं, हमारे बीच में प्यार नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। आर्यांश को तो कभी नहीं होगा। दीवा को अपनी सोच पर हंसी आने लगी कि वो आर्यांश के साथ प्यार के बारे में सोच भी कैसे सकती है। उसने एक नज़र कौसी की तरफ देखा। इसके बारे में आर्यांश ने पहली मोहब्बत का स्वाद बताया था। दीवा ने उसे टेस्ट किया तो वो उतना ही कड़वा लगा। उसने उसे वहीं पर छोड़ा और फिर वहां से बाहर निकल आई थी। वहीं दूसरी तरफ दीवा की वजह से नवीन गोयनका इस वक्त डिटेंशन सेंटर में रक्षित से मिलने के लिए गए थे। ये जगह उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और अंदर गए। उन्होंने रक्षित को मिलने के लिए बुलाया था। रक्षित ने जब उन्हें देखा तो वो हैरान रह गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, मिस्टर गोयनका, आप यहाँ? किसी भी खुशफहमी में मत रहना, मैं तुम्हें यहाँ माफ करने के लिए नहीं आया हूँ, नवीन ने हल्के गुस्से में कहा। वे रक्षित जैसे इंसान को माफ करने में यकीन बिल्कुल नहीं रखते थे जो पीठ पीछे धोखा देते हों।
उनकी बात सुनकर रक्षित की नजरें झुक गई थी। वो जानता था कि उसकी गलती है और वो माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है। वो दीवा को बहुत चाहने लगा था। अगर उसे इस बात का एहसास पहले हो जाता तो वो अतीत की कड़वी यादों को भूलकर दीवा को बहुत प्यार से रखता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अक्सर इंसान को किसी चीज़ की अहमियत तभी समझ आती थी जब वो उसके हाथ से निकल जाती थी। रक्षित ने नज़र उठाकर ऊपर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मैं आपके और दीवा की माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मेरे पास तो मौका भी नहीं है। जब मैं जेल से निकलूंगा तब तक शायद मेरी माफ़ी की कोई अहमियत भी नहीं रहेगी। नवीन नहीं चाहते थे कि रक्षित किसी गलतफहमी का शिकार रहे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, उस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स फाइनेंशियली काफ़ी गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे थे। कंपनी बेचना उनका सबसे अच्छा डिसीजन था जो उन्हें बैंक्रप्ट होने से बचा सकता था। रक्षित भी कहीं ना कहीं इस बात को जानता था, पर उसके पेरेंट्स ने जब सुसाइड किया तो वो अकेला रह गया। उसे यही लगा कि कंपनी बेचने की वजह से उन्होंने खुद की जान ली थी। रक्षित ने सिर हिलाया और कहा, मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ जो आप मुझे यहाँ मिलने के लिए आए। यहाँ रहते हुए मुझे भी काफ़ी चीज़ों का एहसास हुआ है। मुझे इन सब में दीवा को बिल्कुल नहीं घसीटना चाहिए था। नवीन ने रक्षित की तरफ घूर कर देखा। उन्हें लोगों को पहचानने की अच्छी समझ थी। उन्होंने आज तक गलती नहीं की थी, पर रक्षित के मामले में वे गलत साबित हुए। जब उन्होंने पहली बार रक्षित को देखा था तो उन्हें यही लगा था कि ये काफ़ी टैलेंटेड है और बहुत आगे तक जाएगा। वाकई रक्षित उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था, लेकिन बाद में उसने धोखा दे दिया। तुम्हें पछतावा हो रहा है, यही बड़ी बात है। मैं यहाँ केस वापस लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, नवीन ने सख्त आवाज में कहा। रक्षित को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, और वो क्या शर्त है? रिहा होने के बाद तुम ये शहर छोड़ दोगे और कभी यहाँ वापस नहीं आओगे, नवीन ने बताया। ये सुनकर रक्षित को झटका सा लगा। ये शहर उसके लिए मायने रखता था। उसके पेरेंट्स से जुड़ी उसकी यादें यहीं पर थीं, उसका घर था। वो इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जा सकता था, जबकि उसके ऐसे हालात नहीं थे कि अब वो स्टेबल कंडीशन में हो। रक्षित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं इस शहर को नहीं छोड़ सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी दीवा के सामने नहीं जाऊँगा। हर किसी को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है, तुम्हारी सज़ा यही है। सोच लो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो कल तुम्हें रिहाई मिल जाएगी, तुम्हारे पास टाइम है, नवीन ने कठोरता से कहा। नवीन वहां से जाने को हुए तभी रक्षित ने खुद को सख्त करके कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन क्या मैं जाने से पहले एक बार दीवा से मिल सकता हूँ? ये वही डिसाइड करेगी, अगर वो मिलना चाहती है तो मिल सकते हो, नवीन ने जवाब दिया। उन्हें भी यही ठीक लगा कि जाने से पहले एक बार रक्षित और दीवा मिले तो उनके बीच की जो यादें हैं वे अच्छे तरीके से खत्म हो जाएं। थैंक यू सो मच अंकल, रक्षित ने भारी आवाज में कहा। उम्मीद है यहाँ से निकलकर तुम एक अच्छा इंसान बनोगे, नवीन ने जाते जाते कहा और फिर वहाँ से निकल गए। रक्षित वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। अगर उसे पता होता कि उसके बदले का ये अंजाम होगा तो वो इस रास्ते पर कभी नहीं चलता। उसने अपने प्यार को खो दिया था, अब उसे अपना घर और ये शहर भी छोड़कर जाना था, लेकिन उसने जो किया था उसकी ये बहुत छोटी सजा थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश के मना करने के बाद भी दीवा अभी भी मॉल में थी। वहीं आर्यांश अपने काम के चलते उसे छोड़कर गया था, लेकिन फिर भी उसे बहुत बुरा लग रहा था, जबकि आर्यांश इस वक्त अपने काम के चलते नहीं किसी और वजह से वहां गया था, जिसका पता चलने पर शायद दीवा की सारी उम्मीदें भी खत्म होने वाली थीं। क्या लगता है आर्यांश किस वजह से दीवा को छोड़कर गया था? क्या दीवा और रक्षित की मुलाकात होगी? दीवा का प्यार क्या आर्यांश के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित रहेगा, या वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएगी? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले चैप्टर पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।